ओकारोविन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। प्रक्षालित सकलभूतन कलंका मुनिविरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितम् अज्ञान तिमरांधानां ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम गुरुभ्यो नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं शेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मना प्रतिबोध कारकमिदं शास्त्रं श्री रत्नकरंडकश्रावकाचारनाम धेयम् अस्य मूल ग्रंथकर्तारः श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथकर्तारः श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवास्तेषां वचनोनुसारमासाद्य श्रीमद् समंत भद्राचार्य देवैर्विरचितं मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो गली मंगलं कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलं सर्व मंगल मांगल्यं सर्व कल्याण कारकं प्रधानं सर्वधर्मानां जैनं जयतु शासनम्। कोटिशतं द्वादशैव कोट्यो लक्षणानि सीतित्वधिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसंख्या मेतश्रुतं पञ्चपदं नमामि हरिघंतभासियत्थं गणवरदेवैः गन्त्यं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुदनानमो वयं शिरसा। इच्छाएं बनते सुध भक्ति का और सुखों को दशालोचन अंगु भंग पहिने पाहुने परियम सुतपणि मानियो गुरु गए चूलिया के सुत थे थुजम कायम सहन इच काल मन के मी पूजे मी वंदा मी नमन सामे दुख को कम को हो इलाव सुगे गम नम समायु नम जिन मुन संपत्ति हो मच्छम नमस्तु पूर्वानि श्री साध्य विलयम श्री आचार्य भक्ति गए सुधम गुरु पारुगेभ्या स्वपरमत विभावना पटुमतीभ्या सुचरितपोनिदीप्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्या शतीसगुणसमग्रे पञ्चविहाचारकरण संदर्शे शिष्यानुगे कुशले धम्मायर्य सदा वंदे गुरुभक्ति संयमेन या तरन्ति संसार सायरं घोरम् चिन्नन्ति अक्षकम्मं जन्नं मरणं न पावीन्ति ये नित्यं व्रतमन्त्रहोमनिरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा विरतास्तपोधनधना साधुक्रिया साधवा शीलप्राहरणा गुणप्रहरणा चन्द्रार्कतेजोदिका मोक्षद्वारकपाटपाटनभटा मीनन्तु मां साधवा। गुरुवः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारितारणौ गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशका। इच्छायि वन्ति वैरियुक्तिकौ सुखौ दुःसालोचनं समनानुसमनुसं समचरेजुतानं पञ्चविहाचारणम् आयर्यानम् आयरादिसुदनानोपदेशानं मध्यायानं किरणानुपालनज्ञानं प्रभुसाहुनं सहनिष्कालं च मे पूज्य मे वन्दामि नमस्सामि दुःख को कम को वही लाओ सुगे उन्नम समाय उन्नम जिन मुन संपत्ति भूमिष्यम। नमः शिवर्धमानाय निर्दूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्याधर्पणां। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य समंत भद्र स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। ये रत्नकरंडक श्वाकाचार आचार्य समंतभद्र स्वामी का अपन पढ़ रहे हैं। जो व्यक्ति अपने जीवन के प्रति जो व्यक्ति जितना सजग है वो उतना अधिक मोक्ष मार्ग पर चल रहा है, ऐसा अपन पिछले दिनों से समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जब हम अपने ही जीवन के प्रति लापरवाह होते हैं तो हमारा संसार बढ़ जाता है, और जब हम अपने जीवन को एक अच्छी दिशा देते हैं और निरंतर उस दिशा में आगे बढ़ते चले जाते हैं तो हमारा लक्ष्य हम जल्दी से प्राप्त कर लेते हैं। हमारा लक्ष्य जीवन की पवित्रता ही है, आत्मा की निर्मलता ही धर्म है। इसलिए हम पिछले दिनों से उस निर्मलता के साधनों की चर्चा कर रहे हैं। क्या करूं, किस तरह से अपना जीवन बिताऊं जिससे मेरी आत्मा मलिन ना हो, मेरी आत्मा पवित्र हो। जैसे कहते ना कि ज्यों की त्यों धर दीनी चंदरिया, जैसी साफ सुथरी जीवन में हम बचपन में बहुत निर्मल और बहुत सरल अपना जन्म लेते हैं, पर धीरे धीरे जाकर के हमारी कषायें अभिव्यक्त होने लगती हैं और हम उन कषायों के चलते अपने जीवन का अपने हाथ से पतन कर लेते हैं। तो ज्यों का त्यों जैसा जीवन निर्मल और पवित्र हमने जीना शुरू किया था, वैसे ही हम उसको आखिरी जीवन के अंत तक और ले जा सकें, इसके लिए कौन कौन से साधन आवश्यक हैं। क्योंकि साध्य तो हमारा आत्मा की निर्मलता है, उसके लिए साधन क्या है? तो कहते हैं साधन तो हमारे सच्चे देव गुरु शास्त्र की है, जिन्होंने अपने परिणामों को निर्मल कर लिया है, या ऐसी वाणी जिसे सुन करके हम अपने परिणामों को निर्मल बना सकते हैं, या ऐसा कोई व्यक्ति जिसका हाथ पकड़ के हम अपने परिणामों की निर्मलता के रास्ते पर चल सकते हैं, वो तो सच्चे देवगुरु शास्त्री ही हैं। देव जिन्होंने निर्मलताओं को प्राप्त कर लिया है, जिनके दर्शन करने मात्र से हमारा मन निर्मल हो जाता है, शास्त्र जिसमें लिखी हुई वाणी हमारे मन को निर्मल बनाने में मदद करती है, और गुरु वे तो हम चाहें तो उनको फॉलो कर सकते हैं, उनका हाथ पकड़ के उनके साथ अपने परिणामों को निर्मल बनाने के लिए मोक्ष मार्ग पर चल सकते हैं। तब इन सच्चे देवगुरु शास्त्र का जो हमें आलंबन लेना है, उनके प्रति हमारा गुणानुराग भी होना चाहिए। जब तक हमारा किसी के गुणों के प्रति अनुराग नहीं होता, तब तक हम उसके गुणों को अपने जीवन में हासिल कर ही नहीं सकते। इसलिए लिखा गया कि सच्चे देवगुरु शास्त्र के गुणों के प्रति अनुराग होना यही श्रद्धा है, और गुणों के प्रति अनुराग हुआ तो अब हम अपने को उनके प्रति समर्पित भी कर देंगे। श्रद्धा तो उनके गुणों के प्रति अनुराग का नाम है, लेकिन वो गुण मुझे अपने भीतर भी प्रकट करना है, इसलिए वो जैसा कहें वैसा हमने स्वीकार कर लूं। ये जो टोटल एक्सेप्टेशन है, जो स्वीकृति है, वही समर्पण है। और ऐसा समर्पण अगर एक बार सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति कदाचित हमारे जीवन में हो जाए, होता बहुत मुश्किल से, बहुत मुश्किल से। कब हो जाएगा कहा नहीं जा सकता, इतनी बातें सुनने के बाद भी हो जाए कोई जरूरी नहीं है। वो समर्पण जब जीवन में अपने शांति आना शुरू होती तो मालूम पड़ता कि हाँ, हमारे जीवन में वास्तव में समर्पण आ गया। वो उसकी कसौटी है कि हमारा जीवन निर्मल होना शुरू हो गया है। इसका मतलब है कि हमारा सच्चे देव गुरु शास्त्र के प्रति अनुराग अब समर्पण बन गया। ऐसे समर्पण के साथ जब हम अपने जीवन को एक सच्चे रास्ते पर चलाने के लिए उत्सुक होते हैं, क्योंकि जब तक जीवन में अंधेरा था, मालूम नहीं था कौन सा रास्ता है, अब तो हमको सच्चे देवगुरु शास्त्र के माध्यम से सच्चा रास्ता भी मिल गया है। रास्ते पर से हमने अंधेरा भी हटा दिया, अंधेरा भी हट गया कहना चाहिए। मोह तिमराप हरणी दर्शन लाभात अवाप्त संज्ञा। अब जो मोक्ष मार्ग है वो हमारे ही कषाय और हमारे ही मिथ्यात्व के माध्यम से ढका हुआ था, अंधेरे में था, वो हमारा हट गया है। हमारी श्रद्धा के माध्यम से, हमारे समर्पण के माध्यम से हमारे जीवन में जो मिथ्यात्व है वो हट जाता है, और उसका अंधेरा हटते ही हमें रास्ता ठीक दिखाई देने लगता। जिसे रास्ता ठीक दिखाई दे जाए और वो ना चले तो क्या कहेंगे, यही कि तुम्हें रास्ता ठीक से दिखाई नहीं पड़ा, कहते जरूर हो कि मुझे रास्ता दिख रहा है। और जो चलना शुरू कर दे तो समझना कि हाँ सचमुच उसने रास्ता जान लिया है। बहुत दिन से कोई भटका हुआ हो और सबसे पूछता फिरता हो, संसार से भयभीत है और पूछता फिरता है कि कौन सा रास्ता है जो मुझे इस संसार से, या जंगल में भटक गया है और जंगल में पूछता फिरता है कि मुझे रास्ता नहीं सूझता, और कोई मिल जाए और उसे सच्ची रास्ता बता दे और वो विश्वास करे उस सच्ची रास्ते पर और ना चले, तो फिर क्या कहलाएगा? कि या तो ये है कि तुम्हें सच्चे रास्ते भरोसा नहीं, और या फिर जो है तुम निकलने नहीं चाहते जंगल से, तुम तो बात भर कह रहे हो कि हमें निकलना है, हम भटक गए हैं। इससे यही प्रदर्शित होता है। तो जब भी कोई सच्चा रास्ता मालूम पड़ने पर उस पर न चले तो समझना कि उसे सच्चा रास्ता नहीं मालूम, या फिर अभी वो संसार से भयभीत नहीं है। मोक्ष मार्ग उनके लिए है जो संसार के दुखों से भयभीत हो चुके हैं, जो संसार के आवागमन से बचने में रुचि रखते हैं, जो अपनी आत्मा की मलिनता से भयभीत हैं, अपने आत्मा की पवित्रता के लिए उत्सुक हैं, उनके लिए है मोक्ष मार्ग, उनके लिए ही है आचरण, व्रत, नियम, संयम इत्यादि। व्रत, नियम, संयम लेना भी आसान नहीं है, क्योंकि जब तक हमारी दृष्टि निर्मल नहीं होती है तब तक हम व्रत, नियम, संयम या तो ले नहीं पाते हैं, ले भी लेते हैं तब भी हम उनके द्वारा कोई ज्यादा लाभ नहीं ले पाते, अपने जीवन को अच्छा नहीं बना पाते। तो हमने पिछले दिनों यही बात सीखी है कि हमको श्रद्धा हमारे भीतर उमड़नी चाहिए, हमारे जीवन में समर्पण आना चाहिए, और जब हमें सच्चा रास्ता मिल गया है तो एक एक कदम जिससे जितना मिल बने उस सच्चे रास्ते पर चलने के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए, उद्यम करना चाहिए। जैसे संसार के कामों के लिए हम उद्यम करते हैं ऐसे ही मोक्ष मार्ग के लिए उद्यम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं चलेगा कि होनहार होगी, हमारा समय अच्छा आ जाएगा तो हमारे जीवन में धर्म आ जाएगा। जब हम संसार के कामों में ये नहीं कहते कि हमारी होनहार अच्छी होगी तो हमारे पास संसार की सब सुविधाएं आ जाएंगी, तो फिर हम मोक्ष मार्ग में कैसे कह सकते हैं? मोक्ष मार्ग में भी हमें उद्यम करके ही अपने आचरण की पवित्रता के साधन जुटाना पड़ेंगे। साधन जुट जाने के बाद भी भैया परिणामों में निर्मलता आवे कछु ऐसी जरूरी नहीं, लेकिन इतना उद्यम तो करना पड़ेगा। और फिर जैसी अपने अंतरंग में योग्यता होगी उसके अनुसार ही कार्य होगा, पर निमित्त तो हमें मिलाना ही पड़ेंगे। अपने आप नहीं मिलने वाले कि कोई मुनि महाराज आपके घर आवे खुदाई अपने तरफ से चल के और कहें कि भैया ऐसो ऐसो कर लो, ऐसा तो हुआ नहीं। या कि भगवान ही एक आध दिन आवे कह रही आज तुमने पूजा नहीं करी हमारी, चलो तो कर लो पूजा कर लो हमारी, ऐसा तो नहीं। भगवान कह वाले आने वाले हैं, ये सब जो है हम ही इनका आलंबन ले ले तो ले ले में, नहीं तो ये तो अपने कल्याण में लगे हैं या अपना कल्याण कर चुके हैं। ये हमारे लिए निमित्त मिलाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि अनायास हमको निमित्त मिल जाएगा, पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। इसके बाद जैसी उपादान में योग्यता होगी वैसा उसके अनुरूप कार्य होगा। अच्छा निमित्त मिलने पर भी उपादान में योग्यता न होवे तो कार्य उतना अच्छा नहीं हो पाता। इसलिए कहने में आता कि भैया आपके उपादान में योग्यता हो तो निमित्त सब अच्छे हैं। अच्छे निमित्त मिलने पर भी कोई अपना बिगाड़ करे तो करे, निमित्त को खोरी न दे, निमित्त थोड़ी बुरा है। आपका अपना उपादान, आपकी अपनी शक्ति ठीक नहीं थी इसलिए आप उसका लाभ नहीं ले पाए। इसी तरह कई बार व्यक्ति को उपादान में योग्यता होती है तो वो थोड़ा सा पुरुषार्थ करता और अच्छे अच्छे निमित्त मिल जाते और उन निमित्तों को पा करके और अपना कल्याण भी कर लेता। देखो शिवभूति मुनि महाराज थे तो तस्मास घोषंतो भी, उनके कुछ पढ़े लिखे ज्यादा थे नहीं, गुरुजी ने नमोकार मंत्र बताया सो वो भी उनको भूल जाता था। गुरुजी ने एक बार कहा कि मारूसा मातूसा, ने रोष करो ने तोष करो अर्थात ने राग करो ने द्वेष करो, इतने ही दे दिया सो वो ही भूल गए और उसकी जगह पर कहने लगे तुस्मास भिन्नम तुस्मास भिन्नम। अब उसी स्टाइल में था मारूसा मातूसा मारूसा मातूसा, तो उन्होंने कहा तुस्मास भिन्नम तुस्मास भिन्नम। अकस्मात भिन्नम कहते कहते एक दिन जो है रस्ते से चले जाते थे, तो एक अम्मा और दाल बीनती थी, दाल में से छिलके अलग करती थी, दाल अपनी तरफ रख लेती थी। तो मराठी में जो है मांस बोलते हैं दाल को, और तुस बोलते भूसी जो उसका छिलका है। अरे तो उन्होंने कहा अच्छा ये बात है, हमारे गुरुजी जी ये सिखाते थे कि तुस अलग है और मांस अलग है, दाल अलग है छिलका अलग है, आत्मा अलग है शरीर अलग। बस आत्मा अलग है शरीर अलग है, अब भीतर भीतर ये भाव भासना हो गई कि आत्मा अलग है और शरीर अलग। ये भेद विज्ञान जिसको हो जावे सो तो उसका कल्याण फौरन हो जाए। अब इतना सा छोटा सा निमित्त था, योग्यता उनके अंदर में थी, बीज बुद्धि थी कहते उनके लिए, उतने के माध्यम से उनको जो है सब चीजें प्रकट हो गई और उसी जीवन में उनने केवल ज्ञान भी प्राप्त कर लिया। अब जो सोचो कि अंगूठा छाप और केवल ज्ञान प्राप्त हो गया, अनंत ज्ञान प्राप्त हो गया। तो ज्ञान का महत्व नहीं है, उस ज्ञान के माध्यम से हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आया, हमने उसका निमित्त बना करके क्या लाभ लिया, जी हमारी अपनी योग्यता, ये हमारा अपना पुरुषार्थ है। तो ऐसे ही पुरुषार्थ के लिए यहाँ आचार्य भगवंत कहते हैं कि एक श्रावक के लिए इतना पुरुषार्थ तो करना ही चाहिए कि अपने परिणामों की निर्मलता के लिए पांच पाप छोड़ना चाहिए। उन पांच पापों को छोड़ करके जो पांच उसके भीतर अनुव्रत आएंगे, उन अनुव्रतों की रक्षा करने के लिए, उनकी सास संभाल के लिए, उनके बढ़ाने के लिए वो गुणव्रत भी अंगीकार करे। अपन ने वो भी समझ लिया कि ऐसे गुणव्रत हैं दिग्व्रत अनर्दंड व्रत और भोगो भोग का परिमाण। उसके बाद कहते कि मुनियों के जीवन की शिक्षा मिले, महाव्रत में धारण कर सकूं ऐसा गृहस्थ विचार करता है, तो गृहस्थी के जंजाल में महाव्रतों का स्वाद तो ले नहीं सकता, तो सोचता है कि क्या करूं, ऐसा कुछ उपाय हो जाता जिससे कि घर में भी मुझे और महाव्रती जो हैं मुनि महाराज उनके जैसा कुछ करने मिल जाता। तो कहते हाँ मिल सकता है, देशव्रत ले लो एक निश्चित समय के लिए, हम तो अपने कमरे से ही बाहर नहीं जाएंगे, इतनी निराकुलता कर लो, पापकारी के लिए जितना फैलाओ उतना फैलता है, इसलिए समेट लो उसको। तो ऐसा समेटने से तुम्हें एक जगह धर्म ध्यान करने के लिए वक्त मिलेगा, सामायिक करो सुबह दोपहर शाम जैसे ही समय मिले, तो सब प्रकार के परिग्रह को छोड़ करके बैठ जाओ, पंच परमेश्वर जी का स्मरण करो, देखो वैसे ही आनंद आ सकता है जैसा कि सब परिग्रह छोड़ने पे आता है मुनि महाराज के लिए, वैसा तुम अपने यहाँ बैठे। मोटा मोटा हिसाब है, ये मत समझना कि वैसे ही हो गए, लेकिन ऐसा कर सकते हैं, शिक्षा लेने के लिए तो ले सकते हैं। और फिर उसके बाद तीसरा कौन सा बता दिया, अब सामायिक तो तीन संध्याओं में करते हैं, लेकिन दिन भर कैसे धर्म ध्यान में कटे, ये तो घंटे ही भर को पाप छोड़ा, ऐसा करें कि दिन भर पाप छूट जावे। तो कहते छोड़ दो, अष्टमी चतुर्दशी को प्रोषद उपवास करना शुरू कर दो, महीना में चार दिन तो कम से कम दिन भर पांच प्रकार के पाप पूर्णतः छोड़ दिए, और सुबह से शाम तक धर्मामृतम सतृष्णा, धर्मामृत स्वयं पीना, और आसपास जो भी हैं उनको भी धर्म चर्चा सुनाना, जिससे अपना भी उपयोग लगे और दूसरे का भी कल्याण हो गए। इस तरह से जो है प्रोषद उपवास कर दिया। अब कहती कि और निकट आना हो मुनि जनों के साधु जनों के तो क्या करो, उनकी सेवा करो। विद्या का एक चरण अभ्यास से आता है, दूसरा गुरु के प्रति विनय से आता है, तीसरा गुरु के चरणों की सेवा करने से आता, और चौथा विद्या कालीन पच्यते अनुभव से आता है। विद्या के चार चरण में दो चरण तो ऐसे ही लिखे हैं, एक अभ्यास से और एक समय पा करके, लेकिन एक गुरु के प्रति विनय और उनकी सेवा करने। अकेले विनय से काम नहीं चल के, महाराज जी की तो हम बहुत विनय करा था, हमने रोज हाथ जोड़ा था, उनको बेघूम के बैठे ये की चिंता ही नहीं है, हाथ जोड़ा था हम तो रोज, पांव पल्ले जहां से निकल जाओ तैसे पल्ले, तो इतने में काम नहीं बन, अकेली विनय से सेवा भी करना पड़ेगी, उनको चार प्रकार का जो दान है वो भी देना पड़ेगा। देना पड़ेगा नहीं मतलब वो अपने उत्साह से स्वयं श्रावक जो है करेगा, उसी को कहते बैया व्रत। मोक्ष मार्गी की सेवा करने का नाम बैया व्रत है, और बैया व्रत निस्वार्थ होना चाहिए, उसके पीछे कोई प्रति उपकार की भावना नहीं होनी चाहिए, निस्वार्थ सेवा है और मोक्ष मार्गी की सेवा है। इसको अपन पिछले दिनों पढ़ रहे थे, आज जो है एक चीज और समझ लें कि दान और त्याग में क्या फर्क है, क्योंकि दानम वैयाव्रत्यम, दान को ही वैयाव्रत कहा, और एक शब्द त्याग भी आता है उसमें कहते ही रहे कि अपनी चीज का त्याग करना। अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्वोदानम, अपने ऊपर के अनुग्रह के लिए अपनी चीज या अपना धन संपत्ति इत्यादि दूसरे को देना उपकार के लिए वो कहलाता है दान। तो दान और त्याग में फर्क क्या? कहते दान तो जो है पर के उपकार के लिए है, और त्याग में दूसरे के उपकार की भावना नहीं है, सिर्फ अपने ही उपकार की भावना है। हमने छोड़ दिया, अब तो को ले चाहे नहीं ले। एक तो ये स्थिति होती कि अपन कोई राजा है सो अपने योग हो और राज दे करके फिर विरक्त हो गया, और कोई कोई छोड़ करके चले गए, अब चाहे तुम बनाओ चाहे मिटाओ, हमने त्याग कर दिया। तो त्याग में दूसरे की अपेक्षा नहीं है, दूसरे का उपकार हो या ना हो। दान में त्याग भी है और दूसरे के उपकार की भावना भी, इतना दोनों में फर्क है। इसलिए यहां पर भैया व्रत को दान ही कहा है, और अकेला दान नहीं, उसमें यथा योग जो सेवा है वो भी शामिल है। इसलिए भैया व्रत दान से थोड़ा बड़ा व्यापक है। अब अपन पढ़ते कि भैया व्रत में और क्या क्या उसमें शामिल होगा। व्याव्रत की व्यापत्ति व्यपनोदः पदयोः संवाहनम् च गुणरागात् वैयाव्रत्यम् यावा पग्रहोऽन्योऽपि संयमिनाम् अपत्ति व्यपनोदः पदयोः संवाहनम् च गुणरागात् वैयाव्रत्यम् यावा नुपग्रहोऽन्योऽपि संयमिनाम्। इसमें सबसे मुख्य क्या है? गुणरागात्, गुणों से अनुराग होना चाहिए। देखो बेटे की सेवा बचपन से माँ करती है, और एक नर्स भी रोगी की सेवा करती है। दोनों प्रकार की सेवाओं में फर्क है कि नहीं है? एक में मेरा बेटा है ऐसा प्रेम का भाव है, और किसी माँ से पूछो कि तुमने तो अपने बेटे की बहुत सेवा करी, वो कहेगी मैं तो कुछ कर ही नहीं पाई, मैं तो उसे ठीक संस्कार दे ही नहीं पाई। अच्छा तो तुम्हारी सेवा का कुछ चाहोगे, पैसा वगैरह? नहीं। लेकिन रोगी की सेवा नर्स करे तो क्या चाहेगी? पैसा चाहिए। काहे के लिए कर रहे हैं? वहां पर रोगी के प्रति कोई ऐसा भाव नहीं है कि ये मेरा है, नहीं, मेरा काम है, कर्तव्य है, उसके बिना मुझे चार पैसे थोड़ी मिलने वाले हैं, इसलिए मुझे सेवा करनी। अगर नर्स को बेटे की सेवा के लिए लगाओ तो नर्स कहेगी इतनी सेवा करी हमने, कम नहीं करी, बहुत करी है, पैसा इतना बनता उसका। लेकिन माँ से पूछो कि तुमने इतनी सेवा करी, क्या लोगे इसके एवज में? कुछ नहीं। बेटा भी पूरी जिंदगी चाहे तो चुकता नहीं कर सकता उस हिसाब को। हमारे ख्याल से ये समझ में आ जाएगा कि गुण रागात का क्या अर्थ है। क्या ऐसी ही हम मोक्ष मार्गी की सेवा करते हैं जैसी कि एक माँ अपने बेटे की निस्वार्थ भाव से उसके एवज में कुछ नहीं चाहती? कितना अनुराग रहता है, बड़े होकर के वो ही बेटा दुत्कार भी देवे तब भी इसके बाद भी वो हमेशा उसका हित ही चाहेगी। शराब पी के भी आ जाए घरे तो चुपचाप कहे कि देखो पिता ने देख ले, मैं सो जाओ चुपचाप, अब ने करी हुए, तब भी यही कहेगी, भगाएगी नहीं। ये क्या चीज है? ये गुण रागात, वहां मोह कह लो, जो कहना वो कह लो। लेकिन मोक्ष मार्ग में भी ऐसा ही हमारा अनुराग होगा तो भैया वृत्ति नाम का तप है, और नहीं तो ये समझो कि हाउ अब है सो हमें करने हैं, अब आए हैं महाराज तो चौका लगाऊंगे, न चार आदमी का के हैं, और आए हैं सो उनके पास जाने हैं, वे सबके लड़का जाते हैं सो हमारा लड़का नहीं जा, सो वीर वीर सब जने जा कह रहे सो हम भी जान लगे। मगर गुण रागात नहीं है, लाभ सबको एक सा नहीं मिलने वाला। 100 लोग पैर दबा रहे हैं, 100 को अलग अलग लाभ है। जिसका जितना गुणों के प्रति अनुराग होगा उसको उतना भैया वृत्ति नाम का तप होगा, उसको उतना लाभ मिलेगा। बाकी जो है अकेले पैर दबाने से नहीं। दिखा है व्यापत्ति व्यपनोदह पदयोह संवाहनम च गुण रागा। पैर तो दुनिया के दबाए जा सकते अपने स्वार्थ के लिए, लेकिन गुणों के अनुराग बस जो है, जब हम
अपने किसी संयमी जन पर संयमी नाम लिखा हुआ है, देशव्रती या सकल व्रती महाव्रती अनुव्रति जो भी हैं उनके गुणों के अनुराग से उन पर आई हुई आपत्ति को दूर करना, पैरों को हाथ इत्यादि जो भी उनको आवश्यक है उसको दबाना, सदयोह संवाहनम, पैर इत्यादि दबाना। और अन्यापि यावान उपग्रह सवैय वृत्तम उच्यते, और भी जो जिस प्रकार का उपकार हो सके वो सब वैय वृत्ति में आता है। उनके स्वाध्याय में सहयोगी बन गए, हम आपके स्वाध्याय में डिस्टर्ब नहीं करेंगे, हम बाद में आप हम बात कर लेंगे, नहीं आपकी सामायिक का समय, हमें तो दर्शन करवा ही दो, हम बाहर से आए। अब भैया ठीक है, तो अब जो अच्छो दबाव है ये है? कि हम बहुत दूर से हैं और हमारी गाड़ी बिल्कुल खड़ी है, हम बातों एक घंटा लेट आती, सौ मित्र तक चले आए, तो अब जो ऐसे उपकार सो कर रहे आप जी नहीं होना चाहिए, इसमें जी सेवा नहीं कहलाए। वास्तव में देखा जाए तो अपने समय से नहीं, उन्हें किसमें धर्म ध्यान में अनुकूलता है वो हमने उनको बना लिया और अपने परिणाम अच्छे कर लिए, अपने माध्यम से उनका भी लाभ हो गया। इस तरह का जो उपकार है वो सब बैया वृत्ति में आता है। बैया वृत्ति किन किन की करना चाहिए, तो तत्वार सूत्र में अपन पढ़ रहे थे, जब पढ़ा था उसमें आचार्य उपाध्याय तपस्वी सहिष्णु ग्लान गण कुल संग साधु मनोज्ञा नाम, इन सब के भेद से बैया वृत्ति भी 10 प्रकार की हो जाती है, कि 9 प्रकार की है, 10 प्रकार की। तो आचार्य महाराज की बैया वृत्ति अलग ढंग से करना पड़ेगी, उपाध्याय परमेष्ठी हैं जो स्वयं पढ़ते हैं और साधु जनों को पढ़ाते हैं, ऐसे उपाध्याय परमेष्ठी की बैया वृत्ति अलग है, जो तपस्वी हैं महीनों महीनों मासों उपवास करने वाले हैं ऐसे तपस्वी की बैया वृत्ति का अलग आनंद है। केति सैक्ष अर्थात दीक्षा के बाद जो निरंतर शास्त्र स्वाध्याय अध्ययन चिंतन मनन में लगे रहते हैं, बहुत मुश्किल से कभी किसी को उपलब्ध होते हैं, ऐसे सैक्ष साधु भी होते हैं। और ज्ञान जिन्होंने अपने जीवन में जब से दीक्षा ग्रहण की तब से कोई ना कोई व्याधि उनके लगी है, लेकिन इसके बाद भी वे अपने 28 मूल गुणों का पालन शांत भाव से करते हैं, ऐसे ज्ञान मुनि महाराज की बैया वृत्ति करना। 2 और 3 चिर प्रवर्धित साधुओं के समूह का नाम गण कहलाता है, और आचार्य भगवंत के अनुसार आज्ञा में चलने वाले जो मुनि जन हैं उसको कुल कहते हैं, और संघ चतुर्विध संघ है, मुनि आरिका श्रावक श्राविका उन सब की बैया वृत्ति करना। और साधु तो सामान्य रूप से जो आत्मा की साधना में निरंतर लगे हैं वे साधु हैं, और मनोज्ञ कौन है, तो कहते जो साधु बनने के सम्मुख हैं अब उनकी दीक्षा होने वाली उनकी भी बैया वृत्ति करना, या फिर जो सभी साधु जनों के बीच में और प्रिय हैं सबके लिए वे भी मनोज्ञ साधु कहलाते हैं। तो ऐसे सब इन सब की जो है सेवा शुश्रूषा जैसी बने जिसके द्वारा, लेकिन एक चीज भर ध्यान में रखना है गुण रागा, मुझे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र इन गुणों से अनुराग है, इसलिए मैं भागा चला आता हूँ, इसलिए मैं इनकी सेवा में उपस्थित हो रहा हूँ, और कोई मेरा स्वार्थ नहीं है, मुझे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र इनके समान ही प्राप्त हो, मेरे न चाह कछु और ईश रत्नत्रय निधि दीजे मुनीश, मेरी और कोई इच्छा नहीं, सच्चे देवगुरु शास्त्र की सेवा करने आता हूँ तो एक ही है कि मुझे भी रत्नत्रय की निधि प्राप्त हुए, ऐसा जो है गुणों के प्रति अनुराग, तब अपनी बैया वृत्ति नाम का तप होता है। सेवा के लिए परम धर्म कहा है, लेकिन कैसी सेवा, संसार की सेवा नहीं। दान भी जो है 2 प्रकार के होते, एक लौकिक दान होता है, एक पारलौकिक दान होता है। यहाँ पर पारलौकिक दान की चर्चा है, लौकिक दान देने वाले तो बहुत हैं। देखो लौकिक दान में क्या कहलाता, समदत्ती है, सकल दत्ती है, दया दत्ती है, ये सब लौकिक दान कहलाते। समदत्ती क्या है कि अपने समान आचार विचार वाले श्रेष्ठ गृहस्थ श्रावक के लिए अपनी कन्या और धन संपत्ति इत्यादि देना, ये समदत्ती कहलाती, ये लौकिक दान है। इसी को आज की भाषा में डॉबरी बोलते हैं, दहेज बोलते हैं। उसमें लिखा हुआ है कि अपने समान आचार विचार वाले सदगृहस्थ के लिए अपनी कन्या और धन संपत्ति जो अपने पास है, एक गृहस्थी के लायक कि नई गृहस्थी बसा रहे उसके लायक दुनिया देती सो दे दी, ने मांगने की आवश्यकता आए उनने कछु भिखारी जैसे बन करके जो है अपनी हाथ फैलाने की आवश्यकता है, वो तो अपने आप ही स्वेच्छा से देगा, तो ये समदत्ती। लेकिन आज लौकिक व्यवहार भी बिगड़ गया, पारलौकिक तो जैसो है सो है ही, लेकिन लौकिक भी ऐसा हो गया, लौकिक में भी ये समदत्ती नाम की चीज बिगड़ गई। फिर कहते सकल दत्ती क्या कहलाती, अपने वंश की परंपरा के लिए अपने योग पुत्र को धन और धर्म दोनों देकर के संस्कारित करना ये सकल दत्ती कहलाता। ये भी आज कोई नहीं करता। लौकिक दान भी समाप्त हो गया, अपने योग पुत्र के लिए अपनी वंश परंपरा चलाने के लिए अपना धन और धर्म दोनों देना पूरा और अपना परिवार सौंप देना कि बेटे अब तुम्हारी जिम्मेदारी, मैं तो फारिग हो गया, अब तुम समझदार हो गया, तुम्हारा विवाह हो गया, इसलिए तुम्हारी जिम्मेदारी, अब मैं कोई बोलूंगा नहीं तुम्हारे बीच में। ऐसा कोई करता है आज? बहुत मुश्किल है। आखिरी समय मरत मरत तक चाबी खुशी रे बा बानी छूट सका, का पता लड़का ने मिटा दी हमने इतने उसे कमाई, वो खुद ही चले जाए उसे सबरी मिट गई, का है मनोबा छूट नहीं जब तक नहीं छूटती। ये सकल गति का प्रचलन खत्म हो गया, अपने योग्य शिष्य के हाथ में धन और पूरा परिवार सौंप दिया कि बेटे अब तुम चला ना, अब हम नहीं चलाएंगे, हमारी तो हो गई, अब हम तो सिर्फ देखेंगे तुम कैसा चलाते हो, कुछ दिन हम देखेंगे कैसा चलाते हो और फिर जैसा चलाओ चाहे चलाओ, हम तो अब जाएंगे सो महाराज के पास जाएंगे, वहीं रहेंगे। 70-70 साल के व्यक्ति से एक दिन को दुकान नहीं छूट पाती, हमें बड़ा वो लगता है कि अरे अभी तो इनका संसार जो है बहुत, इसी से मालूम पड़े एक दिन को दुकान नहीं खुली, नहीं खुली, लड़का खोले तो खोले, कमाए तो कमाए, जा नहीं काय नहीं खुली, तुम जाओ ना हम जाओ, मंदर ने जे मनो जे है दुकान पे जे, इतना जो है आशक्ति, इससे आशक्ति मालूम पड़ती। आप बातें चाहे कितव करो, पूजा करो चाहे 3 घंटा, हमें इसे कछु मतलब नहीं है, करी हुई है आपने 3 घंटा पूजा, मनोबा आकुलता तो छूटी नहीं है आपकी कि 70 साल के हो गए और अबे दुकान पे जाने हो खुली के नहीं खुली इसकी आकुलता कर रहे, हार्ट अटैक हो गया इसके बाद भी दुकान पे जा रहे, हमें नहीं समझ में आता। बात जरूर अपन बहुत धर्म की करते हैं, सकल दत्ती अगर एक बार मन में आ जाए कि बिल्कुल हमने तो अपने बेटे को सब सौंप दिया, बनाओ तो मिटाओ तो, हम तो निश्चिंत हो गए, तो कर सकता व्यक्ति। और एक होती दया दत्ती, करुणा पूर्वक दीन दुखी अनाथ व्यक्ति को देखकर और उसकी जो मदद की जाती है वो सब दया दत्ती कहलाती, वो करुणा दान कहलाता। जी सब लौकिक दान है ये ही समझ जावे तो भी बहुत, और पारलौकिक दान तो वो कहलाता जिसमें हम उत्तम मध्यम जघन्य पात्र का विवेक करके और उसके यथा योग रत्नत्रय की प्राप्ति के लिए जो दान इत्यादि देते हैं, वास्तव में जो श्रद्धा से दिया जाने वाला दान, वो दान परमार्थ के लिए किया गया दान है। श्रद्धा पूर्वक पात्र को दया बुद्धि से नहीं देना, ये महाराज भूखे हैं अपन खुआ दो, ऐसा नहीं, उनके गुणों के प्रति श्रद्धा है इसलिए वे थोड़ी मांग रहे हैं, लेकिन हम अपना कर्तव्य करेंगे। इस तरह जो श्रद्धा पूर्वक दिया जाए वो परमार्थ का दान है, और जो लोक व्यवहार में चलता है वो लौकिक दान है, फॉर म्यूचुअल बेनिफिट, एक बहुत अच्छा शब्द है, दान के साथ म्यूचुअल बेनिफिट, जो देता है उसका भी लाभ, जिसने पाया उसका भी लाभ, दोनों का लाभ, ऐसी ऐसा ही दान श्रेष्ठ है। अब जो उनके दांत नहीं है वो को तुम चना दे रहे का काम के, गरीब आदमी खुद को भोजन नहीं कर पाऊ तो कह रहे हमारा हाथी ले लो तुम, अब हाथी कहां से पाल है वो, अब खुद खा नहीं पाऊ तो हाथी को कखवा, हाथी पालने वाला बहुत बड़ा होता, तो कहते ऐसा दान नहीं, दान जिससे दूसरे का भी उपकार होवे और अपने परिणामों में भी निर्मलता आवे, ऐसी चीज देना चाहिए। बैया व्रत करण नाम की 16 कारण भावनाओं में एक भावना सोई है, हैं? उसके द्वारा तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता, श्री कृष्ण जी के बारे में आता है कि उन्होंने औषधि दान दिया, उसके फल स्वरूप जो है उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति बांधी, सबके यहां पर औषधि की व्यवस्था करवा दी कि जहां भी महाराज जाएंगे वहां पर, और उनको देव जी को लेकर के और उनकी उपचार किया। तो अंतरंग के परिणामों की बात है, छोटा सा अपना भाव भी और बहुत बड़ा फल दे सकता है, बस ये है कि निर्मलता होनी चाहिए। फिर कहते कि दानम उच्चते अथ किम इति आह, कहते दान क्या चीज है, नौ पुण्य प्रतिपत्ति, गुण समाहितेन शुद्धेन सुनारंभाना धान्यानामिष्यते दानम् नौ पुण्यै प्रतिपत्ति सप्तगुण समाहितेन शुद्धेन अप्सूनारम्भाणा मार्यानामिष्यते दानम्। हाँ, अपन सोलह सोलह पढ़ते ना कि चौका में सोलह की जरूरत है, तो वो सोलह क्या चीज है? असल में ये मराठी का शब्द है सोड़ा शब्द, तो वो शुद्धता के अर्थ में है। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, ये कहलाता सोलह। और वास्तव में देखा जाए तो जिस चौके में सोलह बातों का ध्यान रखा जाता वो सोलह का चौका है। सोलह बातें कौन सी? देखो जे लिखी इसमें, नौदा भक्ति और दाता के सात गुण, सबरे कितने हो गए सोलह। जे जहां पर ध्यान रखा जावे वो सोलह है। सोलह मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि का तो है ही, क्योंकि सोलह शब्द जो है वो शुद्धि के अर्थ में है। पर अगर ऐसा अर्थ भी ले लेवे कि जहां सोलह बातें अर्थात नौदा भक्ति और सात दाता के गुणों का ध्यान रखा जाता वो वही कह रहे नौ पुण्य प्रतिपत्ति। यहां पर नौ पुण्य से तात्पर्य क्या है? नौदा भक्ति। तो कहते नौदा भक्ति पूर्वक जो आहार इत्यादि दिया जाता है, जो सेवा की जाती है, वो दान कहलाती है अर्थात श्रद्धा पूर्वक। और सप्तगुण समाहितेन, अब जो उनको दे रहे हो के तो गुण टटोल रहे, और अपने कहते अपने भी देखो सात आपके पास भी भव चाहिए। उनकी नवदा भक्ति के लिए तो उनकी परीक्षा कर लो कि वे मोक्ष मार्गी है कि नहीं तो देना, लेकिन अपनी परीक्षा भी करो कि हम उस देने के योग्य हैं कि नहीं। सात गुण हमारे पास होना चाहिए। तो कहती सप्त गुण समाहितेन शुद्धेन, सात गुणों से युक्त और कहते हैं सब प्रकार की मन वचन काय की शुद्धि पूर्वक जो दाता के द्वारा किसको दिया गया दान, अब सूनारंभा नाम जिन्होंने गृहस्थी के कार्य आरंभ सारंभ और पांच सूना कहलाते हैं, पांच सूना ओखली चक्की हैं और बाल्टी और झाड़ू और घिनौची, हाँ वो रखने के लिए हैं, हाँ पानी वही उदक घटा प्रमार्जनी चुलू कह पेशनी पीसने की चक्की और ओखली, ये सब जो है ये पांच चीजें हिंसा की हैं, इन्हीं के द्वारा गृहस्थी चलती है। तो कहती जिसने इनका त्याग कर दिया अर्थात जिसने गृहस्थी का ही त्याग कर दिया आरंभ परिग्रह का, उनके लिए देना आर्या नाम अर्थात सम्यक दर्शन आदि गुणों से युक्त जो जीव हैं उनके लिए। कितनी बातें हो गईं? कहती सात गुणों से युक्त और मन वचन काय की शुद्धि पूर्वक जो दाता है उसके द्वारा किसको दिया जाए? घर गृहस्थी से जो विमुख हो चुके हैं ऐसे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से युक्त जो तपस्वी जन हैं उनके लिए। और कैसो दे दो? दुत्कार के दे दो। नवदा भक्ति नव पुण्यई कहते बहुत नवदा भक्ति पूर्वक देना चाहिए, ऐसा दिया हुआ दान ही वास्तविक दान माना जाता है, उसी से हमारा परमार्थ सदता है। दाता के सात गुण कौन से हैं? कहते श्रद्धा तुष्टि भक्ति विज्ञान अलुब्धता क्षमा सत्यम यस्यैते सप्त गुणाः तम दातारं प्रशंसन्ति। उस दाता की प्रशंसा है जिसके अंदर इतनी बातें हैं। कहते श्रद्धा है, श्रद्धा क्या कहलाएगी? गुणों के प्रति अनुराग है। सुभो स्वामिन अत्र अत्र वहां कहां यहां पधारो भगवान मेरी श्रद्धा तो देखो आप। तो ये श्रद्धा जो है प्रतिग्रहण निकट से ग्रहण करना, पड़गाहन शब्द तो बिगड़ गया, वो वास्तव में प्रतिग्रहण है, निकट से उन्हें ग्रहण करना ये पहली नवदा भक्ति में आता है। कहते ये श्रद्धा है। और तुष्टि जो भी आ गए नहीं आए तब भी संतोष है, तुष्टि होना चाहिए, संतोष भाव रखना चाहिए। और भक्ति, भक्ति का अर्थ है जब तक भी हमारे यहां पर हैं तब तक हम उनके समीप रहेंगे, उनको मंदिर तक छोड़ करके आएंगे। ऐसा नहीं क्या आ गए हो सो अब बैठो और ठीक है अब हमें और भी काम है बहुत, अब तुम और जो आ दियो, ऐसा नहीं चलेगा। ब्रह्मचारी जी को ऐसा कर देते कई लोग कभी कभी, ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने को जो भी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से हैं, चाहे मुनि महाराज हैं, इलक छुल्लक माता जी हैं या कि ब्रह्मचारी जी हैं, उन सब के लिए अपनों को आदर पूर्वक भक्ति पूर्वक और विज्ञान जानकारी होना चाहिए। अब जो नहीं कि जा चीज हमारी है सो हम ले आए सो जा तो लवाई चाहिए, ऐसा नहीं। उनके योग्य है कि नहीं, आप तो उनके लायक समझ रहे कि उनको रसगुल्ला दे दू, अब उनकी तो हिम्मत नहीं है कैसे ले लेंगे। आपका बिल्कुल शुद्ध है, सब ठीक है, आपका भाव भी है, कहते नहीं, जिससे तपस्या में वृद्धि हो इस प्रकार के भोजन का ज्ञान रहता है वहां पर चौके में तो जितने हाथ ग्रास रख रहे हैं वे सब हाथ माँ के हाथ हैं, और सामने खड़े मुनि महाराज बालक बत हैं, बोल भी नहीं रहे कि का चीज चाहिए का नहीं चाहिए, जा भी नहीं जानत कि पानी अभी दो रस ने दे दियो। श्रावक विवेक रखेगा, ए अभी नहीं, अभी जो है रस नहीं चलेगा, अभी पानी दिया, अभी 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 ऐसे कैसे दे रहे, पानी के ऊपर दूध कैसे दे रहे, ठहरो थोड़ा, नहीं दे ही दो, जो ही दे दो, चाहे उनको जो कचू हो भीतर जाके हम आप पहुंच जाओ चाहिए। कहते ये विज्ञान नहीं, ये दाता का गुण नहीं है, दाता का गुण तो वो है जिसमें वो सजग है, सावधान है, उसको जानकारी है कि कैसे उनको देना है। अलुब्धता, अलुब्धता मतलब मुझे इसके एवज में यश ख्याति इत्यादि मिले और आगामी भोग उपभोग की सामग्री मिले, ऐसी कोई चाहत नहीं, लोभ नहीं। और दूसरी चीज देने में भी लोभ नहीं कि जा चीज बचा ले, अरे जा सबरीदाए दे, ऐसा भी नहीं आया, ऐसी भी लालच नहीं है, और आगामी जीवन में मिले ऐसी भी अलुब्धता है। और कहते क्षमा अर्थात दूसरे से ईर्ष्या नहीं है, दूसरे से मात्सरी नहीं है, और भी दाता हैं, सब आओ और देओ, अरे जे जे देते चले जा रहे, अरे नहीं नहीं कितने हो रहे, ऐसा मात्सरी अगर है तो आपका ही गुण खंडित हो गया और आप खोंदेल लगेगी, उसको तो जल्दी मिल गया उसके गुणों से, आपको देर लग रही है तो उसके गुणों से नहीं, आपके अवगुणों से देर लग रही है। हाँ जाने समझिए कि उनके गुणों की वजह से हमें और देर लग गई, हाँ कोई ना कोई हमारे भीतर विकल्प है, अंतरंग परिणामों की संभाल तो अपन को खुद करनी चाहिए। इसमें लिखा है क्षमा गुण और सत्यम, उस समय हमारे मन में उनके प्रति कोई भी देश भाव नहीं है। कहते हैं कि उस समय ऐसा कोई भाव नहीं आना चाहिए, हो ठीक है अब महाराज जी हैं तो, लेकिन कई बातें हैं जो अपन को ठीक जमती नहीं है, है ना, ऐसा भाव नहीं आना चाहिए, वो जैसे हैं ठीक है, हमारी श्रद्धा बोले तो ठीक है, उनने तो कहने गए नहीं था कि तुम लगाओ चौका, कोई गया आज तक कहने, आपने अपनी सुविधा से लगाया, अपनी शिक्षा से लगाया, आपकी भावना, ये जो है मन में इस तरह की भावना नहीं आनी चाहिए सत्य के लिए। और विशेष रूप से हैं, अच्छा दूसरा क्या नाम दिया, दया, अच्छा दूसरे उस पर दया भाव भी रखना चाहिए, मुदितत्व भी लिखा हुआ है, निरहंकारत्व वगैरह, और भी कई प्रकार से दाता के सात गुण हैं, ये इसमें तो ये भी है, जैसे श्रद्धा शक्ति अलुब्धता भक्ति ज्ञान विज्ञान को ज्ञान दया और क्षमा, ये सात गुण भी हैं। इस तरह से दाता के अंदर ये सात गुण और मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि तो होती है। नवदा भक्ति अपन जानते हैं, पड़गाहन कर लिया, उच्च स्थान दे दिया, सब सहज रूप से होता है, कोई भी अतिथि आएगा तो उसको ग्रहण, अरे आइएगा सहज रूप से बैठोगे तो बैठने की प्रक्रिया का नाम उच्च स्थान ग्रहण करना, और फिर क्या करेंगे, अरे जरा लाओ तो हम आपके पैर धुला लें, जरा माथे से लगा लें, आपकी पूजा करेंगे, सो माथे से लगा लिया, पूजा कर ली, भक्ति दिखा रहे, कैसे मालूम पड़ेगा कि ये श्रद्धा से दे रहे हैं या बिगाड़ टाल रहे हैं। तो कहते नौदा भक्ति, कछु मुनि महाराज को पांव धोवावे की अपनी पूजा करावे की नहीं है, श्रावक की परीक्षा हो जाए, आती है पूजा की नहीं आती, और कुछ नहीं, आप कब सीखोगे, उस माध्यम से जो है सीख जाएगा, और फिर मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि भोजन शुद्ध है। नमोस्तु भगवन जी, हो गई नौ बातें, सो मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, अंजलि, अरे ठहरो ठीक से बोलो, वो मुद्रा छोड़ के अंजलि बांध के भोजन ग्रहण करो, और नमोस्तु मस्तु कछु नहीं, आज्ञा सी दे रहे कि मुद्रा छोड़ के अंजलि बांध के, सब जगह चल पड़ा ये पैटर्न, पता नहीं कहां से ये शुरू हो गया। हम तो कहते मैं और जोड़ लो तनक हमारी तरफ से कि मन शुद्धि वजन शुद्धि काय शुद्धि आहार जल शुद्ध है, मुद्रा छोड़ के अंजलि बांध के खड़े होके चबा चबा के भोजन करो, अब क्या कहें, और सब ही बता दो जैसे बिल्कुल ही बुद्धू हो। अरे अपना ये कहां लिखा उसमें, उसमें तो यही लिखा कि मन शुद्धि वजन शुद्धि काय शुद्धि भोजन शुद्ध है भगवान, जो विधि हो जैसा हो आप ग्रहण करिए, नमोस्तु ग्रहण करने की आपके ऊपर निर्भर करता कि आप कैसे करेंगे। कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है, सहज रूप से प्रक्रिया थी, लेकिन उसमें भी ऐसा दांव पैंत जैसा लगने लगता है, क्या आवश्यकता है। सामान्य रूप से चला आ रहा था, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल श्रद्धा अंजलि छोड़कर भोजन ग्रहण करिए, नमोस्तु भगवान, ये सामान्य चला आ रहा था, उसमें जो है और एक प्रपंच में डाल दिया, तो पूरी मैकेनाइज हो जाती प्रक्रिया। मैं मशीनीकृत देखता हूँ, मशीनीकृत नहीं होना चाहिए, बहुत भावात्मक होनी चाहिए, सहज। एक अम्मा जी थी, वो अभी अब तो नहीं रही, वो हमेशा मैं उनके याद आ जाता है ऐसे मौके पर, वो क्या कहती थी, आ महाराज, कबू हमने उनसे नहीं सुनी कि गृहशाला में प्रवेश करो के भोजनशाला, आ महाराज, और फिर पहुंच गए, सुनने उनने उच्चासन कही, बैठो महाराज, इतने प्रेम से पगे हुए शब्दों में बैठो महाराज, और उनके मुंह से अच्छा लगता था, और कोई ऐसा करे तो को बनावटी हो जाए, लेकिन इतनी सहजता से, फिर पूजा कर ली, सब हो गई, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, जीव महाराज नमोस्तु, लेव जीव महाराज। अब जैसे बुंदेल घंटी में अपन कहते कि जीव, अब जैसी आपकी जो प्रक्रिया हो, चाहे अंजलि छोड़ो, चाहे बांधो, चाहे जो करो वो करो, लेकिन सहज। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि सहजता, इस तरह नौदा भक्ति है, इससे पुण्य का अर्जन होता, हमारी भावनाओं पे हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्रिया पर नहीं। ये इसमें इस तरह ये दान की प्रक्रिया है, और अकेले अपन आहार की प्रक्रिया के लिए नहीं, और भी सभी प्रकार की औषधि दान है, अभय दान है, उसमें भी नौदा भक्ति होनी चाहिए, ज्ञान दान में भी नौदा भक्ति होना चाहिए। भक्ति पूर्वक ही जो है, शास्त्र इत्यादि भेंट करते हैं तो भी पूरी भक्ति पूर्वक करेंगे, सभी प्रकार का, चार प्रकार का दान, और सबके लिए, मुनि महाराज हों या कि एलक शुल्लक हैं, माता जी हैं या आपके ब्रह्मचारी हैं, अपने भाव भक्ति तो पूरी होना चाहिए, क्योंकि लाभ किसका मिलने वाला, अपनी भाव भक्ति। अब ये बात अलग है कि जैसी भूमि में बोया गया होगा वैसा अच्छा बीज भी बुरी भूमि में बोया जाए तो अच्छा फल नहीं देता, ये बात जुदी है। तपन पात्र को देंगे, पात्र में भी जो श्रेष्ठ होगा उसको विशेष हो ही जाता है, विशेष विशेष पात्र होगा तो उसके माध्यम से विशेष आपको लाभ मिलने वाला। पर ऐसा नहीं कि पात्र विशेष नहीं है इसलिए हम अपने परिणाम भी विशेष न रखें, जगह लिखी, अपने परिणाम तो हम सबके प्रति विशिष्ट ही रखेंगे, पात्र की विशेषता से मेरे लिए और ज्यादा लाभ मिल जाएगा। इस तरह ये दान की प्रक्रिया है भैया, हम सब लोग जो है इस तरह का दान अपने जीवन में, ऐसी सेवा, ऐसी भैयावृत्ति करके मुनि जनों के जैसे आचरण की शिक्षा ले सकें, इसी भावना के साथ बोले आचार्य गुरुवर विद्या सागर मुनि। दो तीन बातें मुझे कहनी हैं, मेरा फर्ज तो नहीं है पर इन्फॉर्मेशन कि कल से जो है 8:15 संगोष्ठी शुरू होगी। संगोष्ठी को ये मत मानिएगा कि विद्वान आएंगे और बड़ी बड़ी बातें करेंगे, नहीं, बहुत सामान्य जो है चर्चा होगी, विचार होगा, उसको सबको बैठ के सुनना चाहिए। कहीं कुछ कठिनाई होगी तो उसके बाद मैं 15 मिनट या 10-15 मिनट और उस चीज़ को सरल करूंगा। अपन विज्ञान से जैन धर्म को जोड़ करके आज के आने वाली पीढ़ी को कोई संदेश दे पाएंगे, इसलिए ये है प्रयास। तो हमारे साथ तो चल जाता है कि हमने शुरू भी कर दो तो भी चले आ रहे, मनोज जी अच्छा नहीं लगेगा, इतने सबके बीच में अपना फर्ज है कि अगर हो सके तो अपने प्रतिष्ठान ने खोलने का अगर मन बना ले, विकल्प ने करें 3 दिन के लाने पैसा तो 4th दिन भी उत्तो सबरो आज जितने 3 दिन में आ रहे। देखो अगर थोड़ा मन बना ले तो समय से जो है 8:15 यानी 8:15 पर अगर आके उपस्थित हो जाएंगे, भव्यता लगेगी। उधर दोपहर में भी जो है 2:30 से है, और शाम को जैसे अपन भक्ति के बाद फ्री होते हैं तो भक्ति के बाद तुरंत हम थोड़ी देर तो साथ में बैठेंगे 6:30 तक, और विद्वान अपनी बात रखेंगे, उसको अपन सुनेंगे। जिसको जो उसमें चीज़ नहीं समझ में आए तो तुरंत अपना कागज लेके आना, उस पर लिख के और भेज देना, बढ़िया से जो है प्रश्नोत्तर भी होंगे, सबका लाभ जो है अपन को लेना चाहिए। मौका जो है बार बार कितने ही अरेंज करो तो नहीं होता, इसको वैसी संगोष्ठी नहीं समझना कि विद्वानों विद्वानों की है, बड़ी बड़ी चर्चाएं होंगी, ये सामान्य जन के लिए कैसे, उसके आप लेख भी पढ़ लेना कि देखो कैसा जीवन में जैन धर्म, परिवार में जैन धर्म, समाज में धर्म कैसे लाया जाए, बहुत प्रैक्टिकल। आज जो है बच्चों को क्लोनिंग का विषय चला, अभी विद्वान वो आ चुके जिनने तैयार किया क्लोनिंग, और जैन धर्म में कैसे उसको हम उस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं, आज बहुत सारी विज्ञान की खोजें हैं, इन सब बातों पर अपन चर्चा करेंगे। इसलिए थोड़ा सा समय का जरूर कि एकदम उपस्थित हो जाएं।